अंतर में निर्मलता आई। अंधेरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित करके मन दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से
आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 1969 में, उसी वर्ष आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला। आपने साउथ गुजरात से मैट्रिक बोर्ड में राज्य में प्रथम आने का गौरव प्राप्त है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि HSC बोर्ड के एग्जाम पास करने के पश्चात आपने निर्णय लिया कि आपको अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित करना है। शुरुआत में आप गुजरात के विभिन्न स्थानों में जैसे सूरत, वडोदरा, भरूच, अहमदाबाद आदि स्थानों पर रहकर सेवाएं दी। फिर 14 वर्ष लगातार स्थायी रूप से भावनगर में रहते सब जोन इंचार्ज पद पर अपनी सेवाएं संभाली। जब 1993 में ज्ञान सरोवर का नवनिर्माण कार्य चल रहा था, वह वर्ष आपके जीवन का स्वर्णिम वर्ष रहा, क्योंकि बाबा दादियों ने आपको यहाँ बुलाया और ज्ञान सरोवर में रहते आपने रिसेप्शन, एकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में 17 वर्ष नियमित रूप से आपने अपनी सेवाएं दी। फिर 2010-11 में जब शांतिवन में बेहद सेवाओं का विस्तार बढ़ने लगा, बाबा ने आपको शांतिवन में बिठाया और वहां रहते आप हेडक्वार्टर के सभी परिसरों में सेवाएं देते हैं। मुख्य रूप से आप कुशल राजयोग शिक्षिका हैं, सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, भट्टियों में अनेक विषयों में पर क्लासेस भी कराते हैं और राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत विभिन्न विंग्स के कॉन्फ्रेंस चलते हैं, उसमें भी आप अनेक विषयों पर व्याख्यान देते हैं। आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ साथ ब्रह्म कुमारी टीचर्स ट्रेनिंग की कार्य प्रणाली आपके कंधों पर है। आप भारत देश और विदेश भी भ्रमण करके आए हैं। आए दिन पूरे भारतवर्ष से आपको निमंत्रण मिलते रहते हैं, कहाँ शिविर कराने, कहाँ भट्टिया कराने, कहाँ बिजनेस इंडस्ट्री विंग्स के प्रोग्राम्स भी आप करवाने जाते हैं। आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबारों पत्रिकाओं में छपते रहते हैं और साथ साथ पीस ऑफ माइंड, आस्था, संस्कार चैनलों पर आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। आप में मनन चिंतन करने की विशेषता होने से आप मुरलियों की खूब गहराई में जाकर ज्ञान रत्नों को निकालते हैं और हम सभी ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान और योग से लाभान्वित करते हैं। तो ऐसी प्रतिभावान विद्या की देवी आज हमारे बीच में पवित्रता, ज्ञान का फाउंडेशन और बाप की पसंदीदगी, तो इस विषय पर अपने विचार हमारे समक्ष रखेंगे आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। बिल्कुल पूरब से पश्चिम में आ पाए, कितने दूर से आप सभी बाबा के तपस्वी बच्चे मधुबन तपोभूमि में तपस्या करने आए। पहली बार रहे होंगे ना, हाँ, बाबा की तपोभूमि, वरदानी भूमि, पावन भूमि, जहां कण कण में बाबा की याद समाई हुई है। यहां आप नेचुरल योगी बन सकते हैं, बाबा की याद की मेहनत नहीं लगेगी। बाबा का हम सभी बच्चे दिल से शुक्रिया करते हैं कि बाबा ने हमारा जीवन पवित्र और योगी बनाया। हम योगी बनेंगे ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, भक्ति करते थे, भगवान को मानते थे, पर जीवन तो भोगी था। बाबा ने ऐसा सत्य ज्ञान दिया, समझ में आ गया राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब वो स्पष्ट समझ में आ गया तो निर्णय हो गया हम सबका कि अब जो कुछ असत्य है, अपवित्र है, अयथार्थ है, अब वहां बुद्धि नहीं लगानी। भक्ति में भावना से भगवान को याद करते रहे, पर वो भी व्यर्थ है ये तो पता ही नहीं। जो मेहनत नहीं करनी चाहिए वो करते रहे, फूल चढ़ाओ और दूध चढ़ाओ और चावल चढ़ाओ, फल रखो। बाबा कहता मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं है। यादगार गीता शास्त्र में भी हम लोगों को यही बताते हैं कि विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो ये थोड़ी कहा कि अर्जुन जा जल्दी जल्दी फूल ले आओ, दीवा करो, आरती गाओ, पांव लगो, नहीं। भगवान ने आदेश तो क्या दिया, मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, मयीम बुद्धि निवेश है, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब बॉडी कॉन्शियस थे तो बुद्धि देह संबंधों में, दैहिक प्रवृत्ति में, नौकरी धंधे में, संसार में, समाज में, विकारों में, व्यसनों में, सब अनावश्यक बातों में मन लगा के बैठे थे। बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि आत्मा जाग गई। ज्ञान तो करोड़ों को दिया गया है, पर जागी वो ही आत्माएं जो देवता घराने की। हम सबका तीसरा नेत्र खुल गया, अब हम खुद परख सकते हैं। इंसान को कदम कदम पर हर बात को परखना होता है, हर परिस्थिति को व्यक्ति को परखना होता है। अगर सही नहीं परखेंगे तो धोखा खाएंगे, टाइम मनी एनर्जी वेस्ट होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परख शक्ति बाबा ने हमें दी, क्योंकि मूल सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। जब बेसिक मूल हर बात का ज्ञान स्पष्ट हो गया तो फिर प्रैक्टिकल व्यवहारिक कोई भी बात का निर्णय लेना मुश्किल नहीं। तो ज्ञान से परख शक्ति आती है। तो बाबा के सत्य ज्ञान से परख शक्ति आ गई सब में। हाँ, परख सकते हैं ना, आप धोखा तो नहीं खाएंगे, माया से भी धोखा नहीं खाएंगे, किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे। हाँ, यही तो बाबा की सबसे बड़ी देन है। पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। परख शक्ति ना होने के कारण ही तो बेचारे भटकते। सत्य ज्ञान ना होने के कारण भक्ति में कितना भटकना हुआ। जबकि भावना थी, श्रद्धा थी, समर्पण था, सब कुछ था, टाइम भी देते थे, धन भी लगाते थे, पर एक सत्य ज्ञान ना होने के कारण हम भटकते रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि पढ़ाई ही सतगुरु की कृपा है। बाबा की सबसे बड़ी देन है ज्ञान देना, जिससे दिव्य बुद्धि मिलती है, सद्विवेक हमें मिलता है। इसलिए ना हम मूंझते हैं, कंफ्यूज नहीं होते। जब ज्ञान की गहराई नहीं होती है ना, तो कंफ्यूज होते। अब हमें कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। बाबा ने बताया ना कि पूरा आदि मध्यांत आलोक परलोक सब बातें बाबा ने हमें समझाई। इसलिए कोई प्रश्न नहीं, परिस्थिति आई नहीं और बुद्धि में ज्ञान आ जाता है, सॉल्यूशन आ जाता है। है ना, ऐसा अनुभव है सबको। तो ये जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट बाबा से मिली है, उसको संभालना है कि हमारी ये दिव्य बुद्धि कभी भी संग दोष में आकर, वातावरण दोष में आकर, अन्न दोष में आकर बिगड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि बुद्धि का ही तो मेन रोल है ना, निर्णय। और योग बाबा की याद से आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती है कि जो करना चाहिए वो ही हम करते, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करे, उसको योगी कहते। योगी माना जिसमें सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है। जिसको संयम कहते हैं, नियम कहते हैं। ये सेल्फ कंट्रोलिंग पावर, विल पावर बाबा की याद से आता है। ज्ञान का प्रथम पाठ ही बाबा ने ऐसा पढ़ाया कि बुद्धि देह भान से निकल गई, आत्मभिमानी बन गए, हरेक के प्रति आत्मदृष्टि बन गए। कम हम एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। तो जैसे ही स्मृति बदली, हमारी वृत्ति भी शुद्ध बन गई। नहीं तो कहां देह भान में फंसे थे, देहधारियों से बुद्धि लगाते रहते थे। पर पहला पाठ ज्ञान का पढ़ा, बुद्धि देह भान से ऊपर उठ गई। पवित्रता जीवन में सहज धारण हो, कोई मेहनत नहीं लगी, मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि बाबा ने स्मृति बदली तो वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई। हम बाबा के बच्चे, हमारा अलौकिक जन्म, ब्राह्मण जन्म, मरजीवा जन्म कहा ही तब जाता है जब पवित्रता की धारणा करते हैं। जब तक पवित्रता नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं, भल रोज क्लास करते हैं, सेवा करते हैं, मददगार बनते हैं, पर ब्राह्मण जन्म नहीं गए। ब्राह्मण तब सच्चा और पक्का जब हम पवित्रता की धारणा करते। बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से, सत्य ज्ञान से अलौकिक जन्म दिया, और बाबा का ज्ञान ही इतना शक्तिशाली है कि मन वचन कर्म की पवित्रता हमारे जीवन में धारण हो गई। बाबा आज भी, बाबा ने बोला ना कि बाबा आया ही है पतितों को पावन बना। बाबा कहते मेरा मुख्य कार्य ही ये है। द्वापर युग में जैसे ही देह भान में आए, अपवित्रता जीवन में शुरू हुई, हमें अच्छा नहीं लगा, भगवान को याद करने लगे। बाबा कहते ना, जैसे ही पतित बनते हैं भक्ति शुरू हो जाती, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल नेचर भी पवित्रता है। मैं आत्मा शुद्ध हूं, सत्य हूं, पवित्र। इसलिए जैसे ही अपने ओरिजिनल गुणों से विपरीत कर्म होने लगे, आत्मा को उसमें सुकून नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, भगवान को याद करने लगे। और सच्चे भक्त की जो साधना है वो इसी दो लक्ष्य से करते हैं कि एक तो पूर्ण आत्म शुद्धि के लक्ष्य से ही तपस्या करते हैं, आजकल भक्ति अल्पकाल की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मतलब से भक्ति करने लगे, परंतु पुराने भक्त सच्चे भक्त आत्म शुद्धि चाहते, इसलिए भक्ति में भी गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। इसी आत्म शुद्धि के लक्ष्य से साधना करते हैं। और भक्ति में दूसरा लक्ष्य है प्रभु मिलन, भगवान मिले, भगवान का दर्शन हो जाए, इसी लक्ष्य से भक्ति करते हैं। हम बच्चे, हमारी भी ये साधना तपस्या है आत्म शुद्धि के लिए। हमें पुनः अपनी अनादि संपूर्ण शुद्ध परम पवित्र स्थिति में स्थित होना है। ब्रह्मचर्य की धारणा तो ब्राह्मण बनते ही हो जाते, अब हम पुरुषार्थी हैं कि कोई भी विकार का अंश न रहे। जब कर्म में पवित्रता धारण कर ली तो मनसा में भी विकारी विचार क्यों हो। जो चीज कर्म से नहीं करनी है वो मन से भी क्यों करनी। इसलिए अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मनसा शुद्ध, मन में भी गंदगी नहीं, कोई विकारी विचार नहीं। अगर सूक्ष्म में, इच्छाओं में, स्मृति में भी अगर विकार है तो हमारे ज्ञान और योग की शक्ति खर्च हो जाती है। एक तरफ हम पुरुषार्थ करते हैं, दूसरी ओर अगर मन सा युद्ध चलता है तो हमारी ज्ञान योग की शक्ति खत्म हो जाती है। मन में भी युद्ध चलता है, अपवित्र विचार आते हैं और अगर हम उनको उसी क्षण स्टॉप नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हमने त्याग दिल से नहीं किया। हमें दिल से त्याग कर, मन में भी वो चीजें याद क्यों हम करें। भाई पहले हम इस थिएटर में बहुत फिल्म देखने जाते थे, पहले हम इस होटल में बहुत खाना खाने जाते, हमें क्यों याद करना है ना? अब वो हमारा मार्ग ही नहीं। बाबा कहते पहले तुम कलयुग में ही तो थे ना, वहां से निकल कर बाबा के बने हो, अब कलयुग को देखना नहीं, मन से भी याद नहीं करना। अब हमारे लिए, जब हम बाबा के बन गए, हमारे लिए कलयुग का विनाश हो गया, हमारे लिए पुरानी दुनिया है ही नहीं। इसलिए मन से भी बाबा कहते मूड करके कलयुग को नहीं देखना। कलयुग से निकल संगम युग में आ गए ना, अब कलयुग में तो पांव नहीं है ना, कि भाई एक पांव कलयुग में एक पांव संगम युग में, ऐसा तो नहीं है ना। देह अभिमान और विकारी जीवन में कितने दुख भोगे, अब हम मुड़ के क्यों देखें। अब हमारी यात्रा है संगम युग से सतयुग की ओर, अब हमें वहां फोकस करना है। आज बाबा ने कहा ना, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। अब हम अपना टोटल अटेंशन सतयुग की ओर लगाते हैं, क्योंकि अब हमें वहां जाना है। बिना पवित्रता योग नहीं लग सकता। जब बुद्धि खुद के देह भान में नहीं रखनी है, तो दूसरे के देह में हमें आकर्षण क्यों होना चाहिए। खुद के ही शरीर को भूलना है, तो दूसरे के शरीर को भोगने की तो बात ही नहीं है। खुद खुद को पक्का कराओ। बाबा कहते हैं मेरा मुख्य कार्य ही ये है। बाबा आया ही है पतितों को पावन बनाने, तो बाबा को हम बच्चों से मुख्य कौन सा सहयोग चाहिए? पवित्र। बाकी धन साधन तो भक्ति में भी लगाते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति में भी धर्म के पीछे कितना समय धन शक्ति खर्च करते। हमने बाबा के कार्य में धन साधन का सहयोग दिया, वो तो देना ही है, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर बाबा को हम बच्चों से सहयोग कौन सा चाहिए? पवित्रता का। हम अपना जीवन पवित्र बनाएं और विश्व को पावन बनाने के कार्य में बाबा के मददगार बन जाएं। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी इसके कारण कितना सहन किया। आज भी बाबा ने कहा ना, पवित्रता के कारण ही मार खाते हैं, अत्याचार होते हैं। अब हम पुरुषार्थी हैं, हमारी दृष्टि वृत्ति में भी कोई अपवित्रता न। हर एक अपने आप को जानते हैं। भाई बाहर से तो हम श्वेत वस्त्रधारी हैं, पर हरेक अपनी आंतरिक वृत्ति दृष्टि जानते हैं कि हमारी मनसा में अब कोई विकार न। पवित्र बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान की धारणा कर सकती। मुरली में आता है ना कि शेरणी का दूध सोने के बर्तन में रहता है। इसका कहने का भावार्थ ये है कि सत्य ज्ञान पवित्र बुद्धि ही धारण कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी वफादारी कौन सी है? बाबा के सिवाय और किसी में बुद्धि उग न जाए। बाबा ने कहा ना, अव्यभिचारी, एक बाबा दूसरा न कोई, है ना। लौकिक रिश्तों में भी अगर आपस में पति पत्नी के संबंध में बंधे हैं, और अगर बहन की बुद्धि और पुरुष में, भाई की बुद्धि और स्त्री में जाए तो इसको बेवफा कहेंगे। हमें बाबा से बेवफाई नहीं करनी, इसलिए बाबा ने कहा अव्यभिचारी याद से ही अटल अखंड बन सकते हैं, एक रस स्थिति तब बनती है। बाबा हमेशा हमें कहते हैं देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध छोड़ो और मेरी शरण में आओ, अर्थात मैं जो कहूं वो तुम करो। तो हमारा कोई भी देहधारी में, कोई भी देह संबंध में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये मौका है संगम युग का, जब बाबा आकर हमें पावन बनाते हैं, योगी बनाते हैं। तो ये फाउंडेशन है बाबा के ज्ञान का, फाउंडेशन है पवित्र। पवित्रता से ही आप रूहानियत ला सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत खुद में धारण कर सकते हैं। बाकी सभी धर्म संप्रदाय, मठ पंथ, बाकी सब कुछ सिखाते हैं, दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, झूठ न बोलो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, सब कुछ सिखाते, पर क्या नहीं सिखा पाते हैं? पवित्र बनो, योगी बनो, ये कोई नहीं कह सकता। भगवान ही हमें कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बुद्धि सदा पावन बाबा के साथ लग सकती है। इसलिए ज्ञान समझा है, इसकी निशानी है कि हमारा देहभान खत्म हो जाएगा, आत्मभिमानी बनेंगे, पवित्रता की धारणा हो जाएगी। भक्ति में भी कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या राम रहेंगे या काम रहेगा। हमने बाबा को बुद्धि में बिठाया है तो अब और कोई देहधारी उसमें बैठ नहीं सकता। अगर हरेक अपने आप को इस मर्यादा में बांधेंगे, ये फाउंडेशन पक्का बना लेंगे, तब हमें एहसास होता है, महसूस होता है कि हमारा जीवन बाबा ने कितना श्रेष्ठ बनाया है। और कोई युग में, और कोई जन्म में, और कोई आत्मा पावन नहीं बना सकता। ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है कि गर्गस्त में रहते कमल फूल बाबा ने बनाए। जो कुछ अपवित्रता थी, अशुद्धि थी, बाबा ने उससे हमें न्यारा कर दिया। हम दुनिया में रहते हैं पर विकारों से अलिप्त रहते हैं। अब बाबा कहते हैं हर कर्मेंद्रिय को भी कमल फूल बनाओ। बाबा ने हमें निमित्त बनाया है नई पावन दुनिया स्थापन करने के लिए, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेवारी महसूस करते हैं सभी कि हमको बाबा ने नई दुनिया स्थापन करने के लिए निमित्त बनाया है। ब्राह्मण बनते ही जिम्मेवारी का ताज बाबा पहनाते हैं। अगर बाबा का वारिस बनना है तो संगम युग में बाबा के कार्य का जवाबदार भी बनना है। ब्रह्मा बाबा सदा कौन सा स्लोगन अटेंशन में दिलाते थे कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, जैसी मुझ आत्मा की वृत्ति होंगी ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो बाबा के साथ हम बच्चे भी निमित्त हैं, हम भी पवित्र सत्य दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में स्वच्छता सत्यता पवित्रता और दिव्यता ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट धारणाएं। बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, इससे हमारे जीवन में कितनी स्वच्छता आ गई। पवित्रता आ गई और दिव्यता। पवित्रता और दिव्य गुण मिलकर दिव्यता कहा जाता है। भाई व्यक्ति ने स्नान कर लिया, शरीर साफ हो गया, पर सिर्फ स्नान करने से तो काम पूरा नहीं होता है ना। फिर हम ड्रेसअप होते हैं, व्यवस्थित तैयार होते हैं, अपने आंख नाक कान मुख हाथ नाखून पांव सब साफ करके व्यवस्थित हम मेकअप करते हैं, ड्रेसअप होते हैं। तो ब्राह्मण बनना माना पवित्र योगी बनना। अब हमारा पुरुषार्थ है कि हमें हर कर्मेंद्रिय को दिव्य गुणों से युक्त बनाना है। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल समान। तो अपने को चेक करो, भट्टी में आए हो ना, खुद खुद को चेक करो। नैन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, चरण कमल, कृष्ण की महिमा में यही गाते हैं कि हर कर्मेंद्रिय कमल फूल समान, मीन्स निर्विकारी। इसलिए देवताई स्थिति की महिमा में हम क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी मन में काम वासना उत्पन्न होती है, अपवित्रता खींचती है, तो हम आत्मभिमानी नहीं बन सकते। पहला ही पाठ पढ़ नहीं सके, हमारी पहली तपस्या आत्मभिमानी बनने की है। अगर दैहिक आकर्षण होते हैं तो ये मनसा अपवित्रता हमें आत्मभिमानी नहीं बनने देगी। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए, वाणी से भी किए, कानों से भी तेरी मेरी बातें सुनी, आंखों से भी देह दृष्टि से देखा, चेहरे के हाव भाव से, हाँ ये भवें चढ़ा के भी इशारा करके, हमने हर कर्मेंद्रिय से पाप किए। अब बाबा कहते हैं कितना भी मन सा तूफान आवे परंतु कर्मेंद्रिय से विकर्म नहीं करना है, ये हमें खुद लक्ष्य रखना है। बाबा ने पवित्र बनाया, अब हमें खुद लक्ष्य रखना है कि मन सा में भी अब कोई विकार ना। अगर ब्राह्मण बनने के बाद भी गुस्सा करते रहते हैं तो आत्माओं का प्यार नहीं पा सके। हर कोई कहेंगे हम अपने आप सेवा कर लेंगे, हम इस बहन के साथ इस भाई के साथ सेवा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गुस्सा कर। पिताजी गुस्सा करते होंगे, घर में आएंगे, बच्चे दूसरे कमरे में चले जाएंगे कि कहीं गुस्सा ना कर दे, आत्माओं के प्यार से वंचित हो जाएंगे। हमें तो सभी आत्माओं का प्यार लेना है ना, क्योंकि बाबा तो परिवार की स्थापना कर रहे हैं, माला बना रहे हैं, एक दो के समीप रहना है। लड़ेंगे झगड़ेंगे, हम संगठित नहीं होंगे तो सत्य मिलने के बाद भी विजयी नहीं बन सके। अगर ब्राह्मण बन के लोभ लालच करते हैं तो भाग्य नहीं बना सकते। वो बाबा के यज्ञ में अपना सेवा नहीं कर सकेंगे। लोभ लालच रहेगी तो संग्रह करते रहेंगे, हम सेवा में लगा नहीं सकेंगे। अगर मोह में फंसे रहेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान भगवान का प्यार नहीं पा सके, क्योंकि जो देहधारी में देह संबंध में मोह रखेगा उनकी बुद्धि बाबा तक ऊपर जाएगी ही नहीं। इसलिए मोह जाल कहते हैं। बाबा के ज्ञान से हमें नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा स्थिति प्राप्त करनी है। और अगर हमें अपनी सेवा का, अपने ज्ञान योग के पुरुषार्थ का, अगर सहयोग का, अपनी गुण कला विशेषता का अभिमान आएगा तो बाबा कहते हैं ना, जिस क्षण अभिमान आया, आत्मा की गिरती कला शुरू हो जाएगी, पतन शुरू हो जाएगी। जिस गुण कला का अभिमान आएगा वो गुण अवगुण बन जाएगी, क्योंकि अभिमान का जहर पड़ गया, वो गुण अवगुण बन जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की देन है, विशेषताएं गुण कला बाबा की देन है। कितनी भी गुण कला हो पर बाबा के ज्ञान से बुद्धि शुद्ध बनी तब सही उपयोग हो रहा है। इसलिए बाबा कहते निमित्त भाव, निर्माण भाव। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, भाव स्वभाव का टकराव भी अपवित्रता है। हमें बाबा ने सिखाया है ना, न्यारा और प्यारा बना। प्यारा माना निमित्त भाव, निर्माण भाव। इसलिए ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य से, पर हमारी मंजिल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी बन, अशरीरी बनना। उस हिसाब से अपने आप को चेक करो, वहां तो आपको ज्यादा समय होता नहीं है, अपना घर संभालना, परिवार संभालना, नौकरी धंधा करना, वहां आप रूटीन पुरुषार्थ कर सकते। इसलिए बाबा ने ये बेहद का घर बनाया कि टाइम निकाल कर यहां आओ, सारे प्रबंध तैयार मिलेंगे। यहां माताओं को भोजन बनाने की चिंता नहीं है, नहीं तो रोज मंथन करना पड़ता है माताओं को क्या बनाए। भाइयों को नौकरी धंधे पर जाना नहीं तो ये फुर्सत मिली है, टाइम निकाला है आपने, तो खुद को देखो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ब्रह्मा बाप समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। बनना है ना सबको, कि आधा अधूरा ठीक है? हाँ? पूरी प्राप्ति करनी है कि थोड़े में ही खुश है? जब भगवान मिला है तो पूरी प्राप्ति करनी है, थोड़ा लेके खुश नहीं हो जाना है। जब दुनिया वालों ने भी समझ लिया कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, इनकी अपनी धारणाएं हैं, कुछ भी करो ये आपका मानेंगे नहीं, है ना? उनको भी पता है इनकी धारणाएं बहुत शक्तिशाली, तो हम भी अपना लक्ष्य कमजोर क्यों रखें? हमें बाबा से पूरा वर्षा, पूरा पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है। बाबा ने ये तो नहीं कहा ना पवित्र बनो, योगी बनो, बाकी अवगुण चलेंगे, ऐसे बाबा ने कहा है? नहीं। तो हमें लक्ष्य बनाना होगा, अगर हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, आप देखो दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल, चालीस साल ज्ञान में चलते हो गए, अभी भी वो छोटे मोटे अवगुण अभी भी है, क्योंकि हमने लक्ष्य नहीं बनाया कि इन अवगुणों को भी हमें छोड़ना है। तो हरेक अपने आप को देखो, अभी भी कौन से अवगुण हैं जिसके कारण हम साधारण दिखते हैं। वरना ब्रह्मचर्य जीवन भर की अन्न शुद्धि, रोज अमृत वेले उठना, रोज ज्ञान योग का ध्यान करना, कितने शक्तिशाली नियम मर्यादाओं को हमने पालन किया। एक दिवस का उपवास करते हैं भक्ति में कि आज नहीं खाएंगे, तो और क्या क्या खा सकते हैं वो सोच के कितने और चीजें खा लेते। और बाबा ने हम बच्चों को जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि की धारणा बनाई, अपने आप कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि अपवित्र के हाथ का खाना ही नहीं है। अमृत वेले उठना कितनी शक्तिशाली धारणा है, बाबा ने टाइम ही ऐसा दिया, दो से पांच के बीच में बाबा से मिलन मनाओ। कम से कम चार बजे उठते हैं, पांच बजे बाबा को याद करते हैं, पांच बजे तक ये अमृत वेले योग से ही योगी जीवन का एहसास हो। इसलिए हमारा लक्ष्य है हर कर्मेंद्रिय से देहभान छोड़ना है, हर कर्मेंद्रिय में तपस्या का तेज धारण कर। तो आप सूक्ष्म पुरुषार्थी बनेंगे और अनुभव कर सकेंगे कि प्रैक्टिकली बाबा हमें ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बना रहा है। अब कर्म में बातें आती है वो दिखाई देती है ना, तो और भी हमें सावधान करेंगे, देखो भाई ऐसा गुस्सा नहीं करना है, ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, ऐसा हम नहीं खा सकते हैं, ऐसे अपवित्र स्थान पर हमें नहीं जाना है। परंतु हमारे मन में जो है वो तो हम खुद ही जानते हैं ना कि मन की स्थिति क्या है, हमारे विचारों में, वृत्ति में, भावों में, भावनाओं में कहाँ तक हम शुद्ध हैं वो हम खुद खुद को जानते हैं। इसलिए खुद लक्ष्य बनाएंगे व्यक्तिगत रूप से, निष्ठा से पुरुषार्थ करेंगे, तो हम अपनी आंतरिक शुद्धि, मन की शुद्धि कर सकते हैं। तो आप मन सा सेवा कर सकेंगे, नहीं तो मन ही ठीक नहीं तो सेवा क्या करेंगे। पहले तो मन शुद्ध हो शक्तिशाली, इसलिए मन वचन कर्म की पवित्रता बाबा हमें धारण कराते। तो हरेक अपने आप को अकेले बैठकर खुद को देखेंगे और लक्ष्य बनाएंगे कि रही सही कमी कमजोरियों को हमें खत्म करना है। बाबा को अब हम बच्चों से क्या सहयोग चाहिए, संपन्नता और संपूर्णता का सहयोग चाहिए। तो देना है ना सबको। हाँ, बहुत अच्छा। ओम शांति।